وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ فساد کرو زمین میں, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. مراد کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کو مان جاؤ, اس طریقے زندگی کو مان جاؤ, آپ کے حکم کے اوپر جنگ کے لیے نکلو, اپنا مال پیش کرو, فساد نہ کرو, اور یہ جو لائف سٹائل تم نے اختیار کیا ہوا یہ دنیا کے نظام کو بگاڑ رہا ہے, ڈیکمپوز کر رہا ہے اللہ کے اس نظام کو, تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو بڑے مسلح ہیں. تو اس سے نفاق کی ایک اور علامت پتہ چلی کہ فساد کا نام اصلاح رکھ دیتے ہیں. کبھی آپ نے ایسی کوئی بات سنی؟ مثلا کسی سے آپ کہیں نا کہ موویز نہ دیکھو, تو کیا کہتے ہیں, نہیں بڑی سبق آموز ہوتی ہیں, ہم تو بس نصیحت آموز ڈرامے دیکھتے ہیں. اچھا جی, ہم تو گھریلو ڈرامے دیکھتے ہیں. چلیں, آپ کی نانی دادیوں کے تجربے تو فیل ہو گئے, آپ کو ہیروئنوں ہی کے تجربوں سے زندگی گزارنی تھی. ہاں پھر کیا ہوتا ہے, آپ نے صرف اس سے ایک نصیحت دیکھی تو کتنا فیشن آپ کے بچوں نے دیکھ لیا, کتنی گندی چیزیں آپ کی آنکھوں نے دیکھ لی. بس کہتے ہیں نہیں, ہم تو صرف خبریں سننے کے لیے رکھتے ہیں, نہیں ہم نے تو صرف بچوں کو کارٹون دکھانے کے نام پہ جائز کیا ہوا ہے. اچھا جی, بعض دفعہ کہیں جاتے ہیں, پتہ ہے اس محفل میں بہت ہی کچھ خرابیاں بھی ہوں گی اور ہر وہ چیز جس سے انسان کے کان گناہگار ہوں, تو کہتے ہیں نہیں ہم تو بس گفٹ دینے جا رہے ہیں, اب چھوڑ بھی تو نہیں سکتے. اچھا گفٹ دینے کے بیٹھ کیوں گے؟ نہیں بس ان کی خوشی کے لیے. وہ نہیں, انہوں نے اب کھانے کے لیے روک لیا, کھانا کھا کے نکل جائیں گے. یعنی آپ دیکھیے کہ اتنے تکلف میں ایک انسان ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ سمجھ ہی نہیں پاتا اور فساد کا نام اصلاح رکھتا ہے. آج بھی جو لوگ سچے دین پہ عمل کرتے ہیں نا, لوگ انہیں کہتے ہیں یہ مس فٹ لوگ ہیں, یہ بیکار ہیں, ہم سب کو خوش رکھتے ہیں, ان کو بھی خوش رکھو, ان کو بھی خوش رکھو, کچھ دین بھی رکھو, کچھ دنیا بھی رکھو. عموماً لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ جی دین کے ساتھ دنیا بھی رکھو, میں انہیں کہتی ہوں اس کو اپوزٹ کہیں. تو آپ ساتھ یہ بھی تو سوچیں کہ اگر ہم اس دنیا میں رہنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آگے بھی تو جانا ہے نا, ہم جینے کی تیاریاں کرتے ہیں لیکن جانے کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فساد کا نام اصلاح رکھتے ہیں. بعض لوگ آپ کو بھی بہت کچھ کہیں گے, کیا ضرورت ہے قرآن پڑھ کے, گھر بیٹھو دیکھو نا گھر کتنا بگڑ جاتا ہے. پھر اچھا بعض آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے دوست بن گئے, دیکھیں آپ کی تو صحت اس قابل نہیں ہے کہ آپ روز اتنی سردی میں نکلیں, اچھا آپ کو 3-4 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے, دیکھو آئی ایم یور ویل وشر, مانو نہ مانو لیکن میں تمہاری مخلص ہوں. کوئی آپ کے پاس آئے گا, دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو پالنا بھی تو نیکی ہے نا, اب تم ان کو چھوڑ کے اور قرآن پڑھنے جا رہی ہو, اگلے سال پڑھ لینا یہ بچی بڑی ہوگی, کیا پتہ اور آ جائے, اللہ کو پتہ ہے نا. لیکن ہمارے اپنے بن کے ڈستے ہیں, یاد رکھیں ان کو بھی نہیں پتہ, اس لیے کہ لا یشعرون, جنہوں نے چکھا ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ انہم ہم المفسدون, جان لو کہ یہی لوگ فسادی ہیں, ولیکن لا یشعرون, لیکن یہ شعور نہیں رکھتے, ان کو پتہ ہی نہیں, یہ ابن الوقت قسم کے لوگ ہیں, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, جیسا دیس ویسا بھیس, جو کرنا چاہو ویسا کر لو. اگر آپ صرف یہاں دیکھیں, دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی فسادی ہیں, تو کس کس قسم کا فساد پھیل رہا ہے. آج تفریح کے نام پہ اخلاق بگاڑے جا رہے ہیں بچوں کے, لائف سٹائل میں فساد ہمارے آ چکا ہے, ایک اللہ کی بجائے مال کے بندے بن گئے, شوہر بیوی کے رشتے کا بگاڑ دیکھ لیجئے, شوہر جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے تو بیویاں باہر کام کرنے بیٹھی ہوئی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی, کمپیوٹرز دیے, اس کا کیا فساد ہے, بیکار جگہ چیٹنگ ہو رہی ہے, وہ چیزیں دیکھی دکھائی جا رہی ہیں جو نہیں دیکھنی, بڑے بڑے سائن بورڈز آپ کو اپنے ملکوں میں دکھیں گے جو بے حیائی کے اشتہار بنے دکھتے ہیں, فیشن کے نام پہ بے حیائی پیش کی جاتی ہے, اپنا مال بیچنے کے لیے ہر 6-7 مہینے کے بعد لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ اب کپڑے بدلو, اب اونچی ہیں تو اب لمبی کر لو, لمبی ہیں تو چھوٹی کر لو, انہی چیزوں میں لوگوں کو پریشان کرا. لوگ ساری زندگی اپنے کپڑے ہی نہیں ٹھیک کر پاتے کہ اب وہ اونچے کو بڑا کریں, بڑے کو چھوٹا کریں, اور جو لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا, اکثر پھر وہ اپ ٹو ڈیٹ یہاں تو ہو جائیں آخرت کے لیے اپسیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آؤ. عموماً لوگوں نے ایسی کہانیاں بنائی ہوتی ہیں, دیکھو ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, بوڑھے ہو کر حج کر لیں گے, فرق کیا پڑتا ہے, چلو چھوڑ دو ان چیزوں کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت کم سمجھ لوگ ہیں, एक और अलामत है, वैज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु क़ालू अनूमिनु कमा आमन अस्सुफ़हाउ। जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे ईमान लाए लोग, तो ये कहते हैं क्या हम ईमान लाएं बेवकूफ़ों की तरह। बुनियादी तौर पे तो यहाँ अन्नास से मुराद सहाबे कराम है, कि जब सहाबे कराम जैसा ईमान लाने की दावत दी जाती है तो कहते थे बेवकूफ़ है। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी के दौर में भी सहाबे कराम को बेवकूफ़ समझते थे, और क्या आज भी लोग सहाबे कराम को गाली देते हैं? कुछ लोग तो ख़ास तौर पे चंद सहाबे कराम को गाली देते हैं। और मुनाफिक की अगली अलामत पता चल गई कि सच्चे मुखलिस लोगों को ये बेवकूफ़ कहते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये उनको बेवकूफ़ कहते हैं। हकीकत के अला इन्नहुम हुमुस सुफहाओ, जान लो कि ये खुद ही बेवकूफ़ हैं। वला किल्ला यालमून, लेकिन इल्म नहीं होता। अगला पॉइंट नोट करेंगे मुनाफिक का, कि इल्म की कमी होती है। देखिए, इल्म दिल के निफाक को ख़त्म करता है। इल्म ही बंदे की निगाहों में आखिरत को नुमायाँ करता है। जो लोग ईमान वालों को बेवकूफ़ कहें, आखिर क्यों? ज़रा एक दफ़ा सोचिए, आखिर क्यों बेवकूफ़ कहते थे सहाबा को? इसलिए कि उनकी नज़र में ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि एक शख्स की कॉल पे सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाना। अब देखिए, कई मौके ऐसे आए कि सहाबा कराम में से कई सहाबा कराम ने अपने माल दे दिए, अपनी जानें पेश कर दीं। वो तो इंतहाई जज्बाती लम्हात में भी अल्लाह के दीन की दावत पे लब्बैक कहते थे, तो मुनाफिकों को ये बात बेवकूफ़ी लगती थी। हालांकि उनको नहीं पता कि बुलंद मकासिद को पाने के लिए कुर्बानी देना बेवकूफ़ी नहीं, ये ऐन अक्लमंदी है। आज भी जो लोग बड़े समझदार बन के जीते हैं ना, उनका यही हाल है। वो कहते हैं हम स्टूपिड नहीं हैं, हम बातों में नहीं आते, हम ऐसे ही जो बुलाए उसके पीछे लग के नहीं चल पड़ते। बहुत सारे लोगों की नज़र में तो आपका यहाँ आके बैठना भी बेवकूफ़ी होगी, कि बस ठीक है, इट्स ओके, हमें क्या नहीं पता कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते, कि हम कुरान नहीं पढ़ते, अब आप कौन सा दीन सीखने जा रहे हैं? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको बेवकूफ़ दिखते हैं ऐसे लोग। आज मुसलमान जो एक अपने अमल पे अपने दीन पे अमल करे, उसको लोग क्या कहते हैं? फनेटिक। और क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिस्ट। और टेररिस्ट। और बुनियाद परस्त, रुज्जत पसंद। ये सब क्या सफाहत वाली ही बातें नहीं लगती? तो याद रखिए, जब भी आप सच्चे दीन पे अमल करेंगे ना, तो कुछ लोगों का बेवकूफ़ दिखेंगे। मैं एक छोटा सा तकाबुल करने के लिए बताना चाहती हूँ कि बच्चे और बड़े की सोच में क्या फ़र्क है। किसी बच्चे को अगर आप 100 रुपए के नोट के बदले में 10,000 नकली नोट खरीदता देखें, आप उसको क्या कहेंगे? बेवकूफ़ी कहेंगे ना, कि कितना बेवकूफ़ है, 100 रुपए की, चलो इसको कैंडी सी मिल जाती, कुछ खाता तो सही। अभी मैं अब कहीं गई हुई थी कुछ कुछ अर्सा पहले, तो मैंने देखा कि घर में बच्चा था 6-7 साल का। अब जब मेहमान आते हैं तो बच्चे बड़ा एडवांटेज लेते हैं। उसने देखा कि माँ बिजी है, थोड़ी थोड़ी देर बता के मम्मी पैसे दो। अच्छा, फिर क्या, वो बाहर गली में कोई चीज़ें बेचने वाला आया हुआ था, जाए माँ से पैसे ले और नकली नोट खरीद के ले आए जो बच्चों को खेलने के लिए था। तो उसकी माँ मुझे कहती है, देखें ये कितना बेवकूफ़ है, असली नोट दे के नकली खरीद रहा है। अब उसने तो ये बात कही, तो मैंने सोचा इस बच्चे की बेवकूफ़ी तो हमें दिखी, हम सब क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने नोटों से नकली चीज़ें नहीं खरीद रहे? क्या हम अपने वक्त से नकली चीज़ें नहीं खरीद रहे? हमारी सेहत, हमारी एनर्जीज, हमारी स्किल्स कहाँ लग रही हैं? वहाँ लग रही हैं जहाँ सब खत्म हो जाना है। आप देखिए कि आपको पता चल जाए कि ये सामने वाला जो प्लॉट है उसमें कोई 2-3 साल के बाद पानी भर जाएगा, और इसमें पानी का रुख आ जाएगा ऐसा, और कुछ होगा ये डूब जाएगा, और इसका ओनर बाहर एक टैग लगा दे कि इस प्लॉट को मेरे से मार्केट में अगर ये 1 लाख का है तो 50,000 का खरीद लो। कोई खरीदेगा? हम कहेंगे छोड़ो, ये तो कल डूबने वाला है। हम दुनिया में एक प्लॉट नहीं खरीदते सिर्फ इस डर से कि ये डूबने वाला है, तो वो ज़मीन जिस पे तूफान भी आने वाले हैं, जिसके ऊपर जलजले भी आने वाले हैं, जहाँ पानी भी फिरने वाला है, जहाँ कुछ नहीं रहेगा। इजा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा वखरजतिल अर्दु अस्काल वकाल अल इंसानु मा लहा। इंसान कह गए जमीन तुझे हुआ क्या? उस जमीन पे हम अपनी सारी स्किल्स अगर लगा जाएंगे, हमारा वक्त वहां लग गया, हमारी एनर्जी वहां लग गई, हम उस दुनिया के पीछे इतने ख्वार हुए कि हम कोई कीमत पे भी हमें वो दुनिया मिले तो लेने को तैयार है। दुनिया से रेलिवेंट हर चीज को देखिए, कोई चीज कुर्बानी के बगैर मिलती है? आपने अगर मास्टर किया तो क्या बगैर कुर्बानियों के कर लिया? आप मेडिकल में पहुंचे तो बगैर कुर्बानी के पहुंचे। आज भी वो लोग जो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के अपनी जॉब्स के लिए निकलते हैं, मैंने कई दफा देखा ऐसा कि कुछ लोग सुबह 4-5 बजे अपनी गाड़ी गर्म कर देते हैं, पता चलता है क्या होता है कि वो जॉब के लिए निकले हैं। कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ फजर के लिए जाती थी तो हमारी गाड़ी मस्जिद के लिए निकलती थी, और उस वक्त कई घरों में से गोरे लोग जो थे उनकी गाड़ियां जॉब्स के लिए निकलती थी, तो मेरा दिल भर जाता था। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ये कितना कमिटमेंट के साथ दुनिया के लिए निकला है। और आज हम मुसलमान जिनको पता है कि जो फजर की नमाज जमात से पढ़ लेगा वो अल्लाह के जिम्मे में आ जाएगा, अल्लाह की हिफाजत में आएगा, हम सारे सो रहे हैं। किसी को अल्लाह 10 घरों में एक को तौफीक देता है जाके नमाज पढ़ाता है, हम भी तो सो रहे हैं ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि ये बेवकूफ़ी असल में क्या है। पता तो उस दिन चलेगा जब पर्दे हटेंगे, आज तो पर्दों में हम लोग मौजूद है ना, इसलिए पता नहीं चलता कि आखिर बात क्या है। और नतीजा क्या होता है कि जब दीन की तरफ नए नए आने लगते हैं ना तो फिर गिल्ट होता है। पुराने दोस्त जब मिलते हैं ना तो इंसान कहता है नहीं नहीं मैं तो वैसे ही हूँ, नहीं नहीं तुमने क्या समझा। जब ऐसे पुराने दोस्तों में होता है इंसान तो उनको देख के झटक के सर से दुपट्टा भी उतर जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं वह इजा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना, और जब वो मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए। वह इजा खलऊ इला शयातिनिहिम, और जब वो अकेले होते हैं अपने शैतानों की तरफ, कालू इन्ना माकुम, तो कहते हैं कि हम बेशक तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़ियून, बेशक हम तो मजाक उड़ाने वाले थे। ये है वो दो रंगी चाल, इधर के ना उधर के। मुनाफिक जो होता है वो दो रंगा होता है, सबको खुश रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमसे कोई नाराज ना हो। कुछ पुरानी मोहब्बतें होती हैं, कुछ बेदीनी की यादगारें होती हैं, अब उनके उनकी महफिलों में जाते हैं तो परेशान है। मैं अमूमन गौर करती हूँ ना तो दुनिया में तीन किस्म के लोग हैं। एक वो है जो टोटल इस्लाम की तरफ आ चुके, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, कंप्लीट इस्लाम की पैरवी, घर में भी अच्छे खुश भी, बच्चों के साथ भी, अपने बच्चों को वक्त भी देते, हलाल कमाते भी, यानी मीन बहुत सेटिस्फाइड है। उनकी ज़िंदगी से बहुत सारे तकल्लुफात निकल जाते, बेकार मशगलें निकल जाते, मसरूफियात निकल जाती, ऐसे ऐसे लोग भी नहीं उनको बुलाते क्योंकि इन्होंने आना ही नहीं। गोया कि अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को फलनुह्यिन्नहु हयातन तय्यिबा, सूरह नहल में आता है, हम आपको एक पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। अच्छा, कुछ लोग एक तीस दूसरी एक्सट्रीम पे होते हैं, वो पूरे दीन को खैर बात कह चुके होते हैं, उन्होंने साफ कह दिया नहीं जी ये हमारा काम नहीं है, जहाँ अल्लाह डालना चाहेगा फिर डाल देगा, अब जो करना है फिर करे, अल्लाह ने तो खुद ही कहा मैं जिसको भी आग में डालूँ। टोटल वॉकआउट कर चुके दीन से, वो भी खुश हैं, ना उनको कोई डिस्टर्ब करता है ना तंग करता है, उनकी अपनी महफिलें उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ख़त्म। असल में पिस्ते कौन है, बीच वाला तीसरा गिरोह, जो थोड़ा सा मस्जिद में जाके भी सुनाते हैं तो मिलाल शुरू हो जाता है, और रात को किसी क्लब में बैठ के पार्टी अटेंड करते हैं तो वहाँ एक दूसरा रंग दिखता है। ये जो बीच की लाइन है ना ये ख़तरनाक है। कभी आपने ड्राइविंग की हो तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो हाईवेज होते हैं ना उसमें तीन ट्रैक्स होते हैं, एक बिल्कुल पहला इस तरफ लेफ्ट होता है, मिडल का, और एक राइट। अमूमन देखिए कि जिसको सबसे फास्ट चलना होता है ना, जो फास्ट ड्राइविंग करता है, तो अमेरिका में उसको ऑल द वे लेफ्ट पे चलना पड़ता है, फर्स्ट ट्रैक सबसे तेज होता है, ठीक है। कुछ लोग जो मीडियम ट्रैक रखना चाहते हैं ना तो वो मिडल लाइन पे आ जाते हैं, और जिनको फर्स्ट थिंग ये है कि स्लो चलना है, सेकेंड थिंग ये कि उनको कोई एग्जिट लेना है, क्योंकि सारे एग्जिट जो होते हैं ना वो राइट साइड पे होते हैं, वो राइट पे इस पे रहते हैं, क्यों, स्लो भी रहेंगे तो खैर है, फिर जहां से ट्रैक चेंज करनी है ना रोड, जस्ट इंडिकेटर देंगे अपने एग्जिट से निकल गए। अब होता क्या है, आप थोड़ा सा तसव्वुर में ला रहे हैं इस चीज को। अब आप देखिए तीन लोग तीन गाड़ियों पे चल रहे थे, जिसको भागना है ना वो फर्स्ट ट्रैक पे जाएगा, उसको पता है मेरा एग्जिट का कोई इरादा नहीं है, आई एम टोटल सेटिस्फाइड, मैं अपने दीन में मुकम्मल मुतमईन हूँ, जो काम मैंने किया है ना मुझे पता है ये मेरा 100% ठीक है, दुनिया अच्छा के बुरा के, मुझे नफा मिले नुकसान पे रहे, आई कैन डू इट। वो ताके कोने में बैठेगा कि मुझे यहाँ कोई डिस्टर्ब ही ना करे, ये है मोस्ट सिक्योर लोग। इस लाइन में जो आप तेज है ना तो आप आगे ही रहेंगे, दूसरे सब आपसे पीछे होंगे। जो लोग तेज ड्राइविंग करते हैं ना उसका एक फायदा ये होता है कि लोग आपसे हमेशा पीछे ही होते हैं, क्योंकि आपने जिसके पीछे आप हुए आपने उसको इतने हॉर्न देने हैं या लाइट दिखानी है, उसने आपको रास्ता देना है जी आप जाइए, लेकिन जो स्लो चलते हैं ना वो हमेशा पीछे रहते हैं। अब होता क्या है कि एक बंदा इस लाइन में, बीच की लाइन वाला सबसे खतरनाक होता है। क्यों? आप, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो उसी की बेस पे बताती हूँ कि जब आप बिल्कुल राइट लाइन पे होते हैं ना, तो आपको ये खतरा होता है कि बस इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, उससे मैंने अपने आप को बचाना है। इस साइड पे तो आपको वैसे ही कुछ नहीं होता, आप सेटिस्फाइड है। जब आप मिडल पे चलाते हैं ना, एक तो आपकी स्पीड थोड़ी कम होती है, दूसरी आपको इधर वाली लाइन वाली गाड़ी से भी बचाना है अपने आप को, और इधर वाली से भी बचाना है। मुझे ये बहुत कंफ्यूजिंग लगती है कि इसमें क्या, या तो फिर बंदा इधर हो या उधर। फिर आप जब लेफ्ट पे आते हैं ना, तो उसमें आपको और प्रॉब्लम है। क्यों? कि थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे वालों ने आपको हॉर्न देने हैं कि जी आप इतनी स्लो जा रहे हैं और हमारा एग्जिट आ रहा है, हमें आगे जाने दें। दीन के सफर में ये तीन रास्ते हैं। अगर आप भागना चाहते हैं ना, फ़फ़िर्रु इलल्लाह की नियत है, अस्साबिकून अलव्वलून में होना चाहते हैं, तो आप अल्लाह का नाम लेके जिस रास्ते पे चले हैं ना, ऑल द वे आप आ जाइए राइट पे। ना लोग आपको तंग करेंगे ना करेंगे, लोग कह कह के खुद ही चुप कर जाएंगे। उनको पता है ये नहीं हिलेंगे, इन्होंने अपनी बात को मान लिया, इनको समझ आ गई है, इनको पता है यही रास्ता है। अच्छा, क्योंकि देख रास्ते का यकीन होता है तो आप चल चलते हैं। आप कहते हैं, मैंने देखा है कि जब हाईवेज पे जाते हैं ना लोग, तो क्रूज लगा लेते हैं गाड़ियों में, यानी 70-80 की स्पीड लगाई, उसको एक स्पीड पे सेट किया, पाँव भी ऊपर करके बैठ जाएं तो आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। दीन के सफर में वही सिक्योर लोग हैं जो ऑल द वे एक साइड पे हो जाएंगे। अगर आप बीच में रहेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, इस कोने में आके बैठने के बजाय इधर बैठेंगे। अब मैं आप सबको नहीं कह रही, आपको तो हमने ही बिठाया ना, आप क्या कहेंगे, शायद मुझे जाना पड़े, शायद मुझे नींद ही ना आ गई, शायद मैं थक गई, चलो मौका मिलता है, देखते हैं क्या होता है, और यहाँ घुले मिले रहेंगे। ये भी खतरा है। इस इधर वाला पूरे फोकस होके सुनेगा, इधर वाले को इधर की भी सुननी है, इसको पीछे वालों का शोर भी आना है। अब इसने कहना मज़ा नहीं आया, डिस्टर्बेंस बड़ी थी, कुछ समझ नहीं, चलो कैसेट भी हैं घर जाके कैस्टों से सुन लेंगे। एक तीसरा इससे भी डेंजरस है, वो आएगा, वो डोर के पास बैठेगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि कुछ लोग हैं वो दीन के किनारों पे रहते हैं, सूरह हज की आयत है। अब होता कि जो किनारे पे है ना, वो बड़ा ही खतर, ये वो है जैसे बिल्कुल ऑल द वे दिस लेन में है, एनी टाइम आई कैन टेक द एग्जिट, इसको यकीन नहीं है। अब देखिए जो तीन, तीसरा तीन ग्रुप हम अभी तक पढ़ चुके हैं ना, मोमिनों के, और इसके जो मुत्तकीन है ना, वो ऑल द वे दिस हैंड पे है, डिसाइडेड फोकस्ड, बारिश आंधी तूफान जो मर्जी हो, मुझे पता है मेरा रास्ता ठीक है, दुनिया अच्छा के दुनिया बुरा के, मेरा नफा हो मेरा नुकसान हो, मैंने अपनी रोड नहीं छोड़नी। जो बीच के लोग हैं ना, इस वक्त जो वो लोग हैं जिसको हम मुनाफिकीन के नाम से पढ़ रहे हैं, और जो पहली साइड है ना इधर वाली, ऑल द वे दिस वे, वो काफिर हैं, जिन्होंने तो सोचा हुआ कि जूं ही एग्जिट मिला चल पड़ेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह की दो रुखी जिंदगी में है कि जब ईमान वालों से मिलते हैं तो ईमान वाले बनते हैं, अच्छा, और जब खलाओ इला शयातीनिम, ये लफ्ज़ भी बड़ा काबिले तवज्जो है कि शैतानों की तरफ जाते हैं भाई। ये शैतान कौन है? उनके सरदार, यहाँ उनके उलमाए यहूद की तरफ इशारा है। अब ज़ाहिर उनको डांट पड़ती थी, छुप छुप के नबी सल्लम की महफिलों में आ तो जाते थे, लेकिन बात तो पता चल जाती थी जब इनके सरदारों को पता चल जाता था कि भाई तुम वहां क्या करने गए थे, तुम्हारा वहां क्या काम है, तो वो कहते थे नहीं 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 कालू इन्ना माकुम, गम ना करो, दिल से हम तुम्हारे ही साथ हैं। अच्छा भी वहां क्या करने गए थे फिर, इन्ना नाहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उन दीवानों का मजाक उड़ाने गए थे। ये क्या बेकार बातें नबी के सामने करते हैं और उनकी सुनते हैं, हम उनका मजाक उड़ाने गए थे। दो रुखी पॉलिसियां, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह इनका मजाक उड़ाएगा। कैसे? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला नु कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या होगा क्यामत के दिन, दूर से जन्नत को देखेंगे, दूसरों को जन्नत में जाता भी देखेंगे, हसरत भी आएगी कि हमें भी जन्नत मिले, लेकिन उम्मीद कोई नहीं, क्योंकि बलिल इंसान वला नफसी ही बसीरा, हर बंदे को अपने हाल की खबर है। इतने में फरिश्ते उनको कहेंगे कि आओ तुम्हारे लिए भी हुक्म हो गया कि जन्नत में चलो, जन्नत के दरवाजे इनको खुले हुए दिखेंगे। यकीन भी नहीं आएगा, लेकिन खुशी के मारे भागेंगे कि अच्छा हमें जन्नत मिल रही है, लेकिन जूं ही जन्नत के दरवाजे के करीब आएंगे, इनके ऊपर जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इनका मजाक उड़ाएगा, व यमुद्दुहुम फी तुग्यानिहिम, और अल्लाह इनको इनकी सरकशियों में ढील देगा। खींचा हुआ है, अल्लाह ने इनको खूब मोहलत दी हुई है। आप कहते हैं अल्लाह इनको पकड़ता क्यों नहीं, इसलिए कि अल्लाह चाहता है ये और बहक लें, इनके खिलाफ गुनाहों की लिस्ट और बढ़ जाए, दुनिया में किसी को गलत काम करता देखें और फलता फूलता देखें। एक सहाबी ने पूछा था कि दुनिया में हम लोगों को देखते हैं ना, वो नमाज पढ़ते हैं ना, उनके पास कोई नेकी ना कोई अच्छा काम, इसके बावजूद उनको दुनिया में बहुत मिल रहा है, इज्जत रोज बरोज बढ़ती जा रही है, माल बढ़ रहा है, शोहरत बढ़ रही है, जो दुनिया का फेम होता है, तो ये क्या है? तो आपने फरमाया कि जालिका इस्तिदराज, जालिका इस्तिदराज, ये अल्लाह की लम्हा लम्हा पकड़ है, दुराजा सीढ़ी को कहते हैं अरबी में, यानी अल्लाह ताला इनको ढील दे रहा है, कैसे कि जूं ही इनका गुनाह खूब बढ़ जाएगा, फिर अल्लाह ताला एकदम इनको खींचेगा, पकड़ेगा, कैसे कैसे लोगों से फिर हिदायत की सारी तलब ही खत्म हो जाएगी। देखिए अल्लाह ताला की तरफ से इनकी रस्सी दराज होना क्या है कि इनके दिल से हिदायत की तलब ही खत्म हो गई, बिल्कुल इनको तमन्ना ही नहीं रही, ख्वाहिश ही नहीं रही कि इनकी कोई इनको हिदायत भी मिले और ये कुछ कर सकें। नतीजा क्या होता है कि ये अपने निफाक पे खुश होते हैं, और उसका एक आखिरी असर क्या होता है कि उलाइकल्लज़ी नश्तरउद्दलालता बिलखुदा, ये हैं वो लोग जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी। अब यहाँ निफाक की तिजारत का तस्करा है, गए थे हिदायत लेने, दुआएं करते थे इहदिना सिरातल मुस्तकीम की, यही लेने गए थे ना, घर से पैसे डाले जेब में हिदायत खरीदने के लिए, बीच रास्ते में इतनी चकाचौंध, इतनी डिस्ट्रैक्शंस मिली कि खरीद के क्या ले आए, इश्तरउद्दलालता बिलहुदा, हिदायत की बजाय गुमराहियां खरीद के आ गए, सबर नहीं कर सके। कभी आपने किसी ना समझ इंसान को देखा हो, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, कोई भी हो सकता है, बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ता है कि मैंने इन पैसों से, कोई मिसाल ले लें, अच्छा काम, अपनी जरूरत की चीज लेनी है, वॉशिंग मशीन नहीं है घर में, तो मैं अब पैसे जमा करके वॉशिंग मशीन ले लेती हूँ। एक औरत है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करे करे करे, क्योंकि थक गई, रोज हाथ से धोती हूँ, बच्चों के कपड़े हैं, ये है वो है, अब इतने को पैसे हुए कि मशीन लेने जाए, और जब जाए तो रास्ते में एक सुनार की दुकान दिख जाए, वो जितने की मशीन आनी थी ना उतने का एक सेट दिख गया, तो कहती है मारो गोली, कपड़ों को छोड़ो धो लूंगी, सेट तो पहन लो। अब उन्हीं पैसों का वो सेट खरीद आई, चले पैसों का सेट भी खरीदा, तो इतनी बेवकूफी तो कम होगी, वो धो लेगी कपड़े सेट के शौक में, बाद में पता चले कि वो तो धोखेबाज था, ये तो इमिटेशन ज्वेलरी को सोने का समझ के खरीद आई। आप बताइए ना वो वापस होगा, ना उससे कुछ मिलेगा, ना मशीन मिली, ना सोना मिला, पीछे क्या मिला, इश्तरउद्दलालता बिलखुदा, ये इतनी जबरदस्त किस्म की तिजारत है कि जो हर लम्हे हो रहा है। और आप सोचिए इससे बड़ा बदबخت कौन होगा जो अपना रासुल माल ही खत्म कर दे। जब बिजनेस शुरू किया जाता है ना, तो एक चीज होती है कैपिटल, कैपिटल कहते हैं रासुल माल, जिससे आप बिजनेस शुरू करते हैं, ऊपर होता है प्रॉफिट, चले प्रॉफिट में कमी बेची हुई बिजनेस चलते ही रहते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन उस वक्त बिजनेस माइंडेड लोग बड़े परेशान हो जाते हैं जब कहते हैं अब तो रास खा रहे हैं, अब तो प्रॉफिट तो छोड़ें, जो असल डाला था ना बेस में, अब उसमें से मनी खा रहे हैं। जिसकी रासुल माल क्या है, यहाँ रासुल माल ईमान, जिन जिन्होंने अपना ईमान ही खो दिया, बताइए वो कैसे ईमान की तरफ पलटेगा। जिसने जन्नत का रास्ता खो दिया, दुनिया के रास्ते पे चल पड़ा, उसको बताइए कि फिर कौन दुनिया का शख्स अकलमंद कहेगा। आप कहेंगे ये तिजारत कहाँ हो रही है, ये कोई दुनिया का खास बाजार है, कोई स्टॉक मार्केट है जहाँ ये मार्केट हो रही है, नहीं, ये हर घर में हो रही है, ये हर ड्राइंग रूम में हो रही है, ये बिजनेस के जगहों पे हो रही है, ये हमारे लाइफस्टाइल में हो रही है। अल्लाह ताला कहते हैं लोग आखरत की कीमत पर दुनिया खरीदने लगते हैं। देखिए दुनिया बुरी नहीं है, इनमें से कुछ भी बुरा नहीं, लेकिन दुनिया की हर वो चीज़ बुरी है जो आखरत की कीमत पे मिले। एक जुमला नोट कर लें, दुनिया बुरी नहीं होती, लेकिन आखरत की कीमत पे जो दुनिया मिले वो बुरी है। इसी तरह ये ऊपर की आयत में देखा, नेकों के साथ जाते हैं तो नेक बन जाते हैं, और शैतानों के पास जाते हैं तो शैतान बनते हैं, इससे वो शख्स मुराद नहीं है कि जिसने अभी अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया है, कल तक था वो थर्ड लेन में, आहिस्ता 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 अब अपनी लेन चेंज कर रहा है, ये मुराद नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आप अगर आप पहले नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते थे और आप पढ़ने लगे तो आप फिर भी आप गाने सुन रहे हैं और साथ कुरान भी सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, ये तदरीज है, आपके लेन चेंज करने के दिन है। लेकिन मसला कब होता है, जब बंदा एक जगह स्टक हो जाए, आपको तो हाईवे पे गाड़ी रोक नहीं सकते, जैसे दूसरी जगहों पे तेज चला नहीं सकते, तो हाईवे पर रोकना जुर्म है, क्योंकि पिछलों के साथ भी टकराएंगे, अगलों को भी मुश्किल में डालेंगे, चलते जाइए चलते जाइए। लेकिन अगर पिछले 5 साल से आप जिंदगी के एक ही स्टाइल में, पिछले 6-7 साल से आपकी ईमानी हालत एक ही है, आपके इल्म का हाल एक है, आपकी नमाज की कैफियत एक है, आपका इखलाक वैसा है, फिर फिक्र की बात है। फिर हो सकता है कि आप गुम गु की कैफियत में, ईमान वाला क्या होता है, उसका हर दिन आगे बढ़ता है, हर दिन आगे। वरना याद रखिए, हिदायत के बजाय गुमराहियाँ, अल्लाह ताला इनकी प्रायोरिटीज बता रहा है। चूंकि बिजनेस माइंडेड लोग थे ना, तो अल्लाह ने खरीदो फरोख्त की बात बता दी। अल्लाह का हुक्म छोड़कर दुनिया की तरफ लपकने वाले यही तिजारत कर रहे हैं। आज भी देखिए, जो लोग इल्म सीखते हैं वो कहते हैं, इससे मिलेगा क्या, क्या इसके बाद कोई जॉब मिल जाएगी, कोई हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, इस इल्म से आमदनी में कितना इजाफा होगा। अल्लाह ताला कहते हैं, इनसे बताओ कि इसके बदले में तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी और तुम्हारी आखिरत भी संवरेगी। लोग सिर्फ दुनिया की एक लैंग्वेज सीखने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, हालांकि कोई प्लान नहीं होता कि उसके बाद उस लैंग्वेज से कुछ कमाना है या उससे कोई जॉब करनी है। लेकिन एक ज़मीन के टुकड़े में सर्वाइव करने के लिए एक लैंग्वेज सीखना लाजमी समझते हैं, तो क्या जन्नत में जाने के लिए वहाँ की लैंग्वेज नहीं सीखनी? आपको तक अरबी ज़ुबान होगी सारी जगह, हशर में अरबी होगी, कबर में अरबी होगी, और जन्नत ही जन्नत में अरबी बोलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि अरबी बोलने वाले सारे नेक हो जाते हैं, लेकिन सर्वाइवल की बात कर रही हूँ। एक ज़मीन के टुकड़े में लोग भी कितने मशवरे देते हैं। मुझे एक साथी को मिली कहीं भी, कहने लगी कि कुरान का कोर्स ज्वाइन कर लिए, किसी ने भी किसी की बात होगी और अब दूसरे लोग बड़े परेशान हैं, उसको भी और मुझे भी मशवरे दे रहे हैं कि नहीं पहले इसको यहाँ की लैंग्वेज सिखाओ फिर कुरान सिखाना। तो मैंने कहा, आप क्या कहती हैं? कहती नहीं, मैं तो मुतमईन हूँ और वो भी मुतमईन है। तो मैं क्या, अल्लाह का शुक्र करें फिर इस पर। लोग तो आपको वो कहते हैं ना कि आप जैसे दोस्तों के होते दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह हमें ऐसे दोस्तों से बचाएं जो अपना बन के हमें धोखा देते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्होंने आला छोड़ के अदना का, कोई सस्ती चीज़ ज़्यादा पैसों की खरीद आए ना, तो हम उसको बुद्धू कहते हैं। तो दुनिया के बाद खरीदार फिर क्या हुए, जो आखरत को बेच कर दुनिया ले आते हैं, ये भी बुद्धू लोग हैं। ये डायरेक्शन लेस लोग होते हैं। फरमाया, उलाई कल्लजी नश्तरबुद्दलालत बिलखुदा फमा रबिहत तिजारत हम। ये जितने मर्जी अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह लें या अपने आप को जितने मर्जी जीनियस कहें, अकलमंद के, इनका ये सौदा नुकसान का ही है। वमा कानु मुहतदीन, और ये हिदायत भी नहीं पाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा इनको इन रास्तों से। ये लॉस्ट पीपल हैं, ये डायरेक्शन लेस पीपल हैं। आज इंसानियत को देखिए, ये इन डायरेक्शन लेस बनी हुई है, कुछ नहीं पता किधर जाना है। एक नारा लगता है, सब उसके पीछे चल पड़ते हैं, कुछ साल बाद वो ख़त्म। एक इज़्म चलता है, सब उस इज़्म के पीछे भाग रहे हैं, फिर ख़त्म। बचेंगे कब? जब अल्लाह ताला उनको एक रास्ते पे लाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, इंशाल्लाह फिर अपने आप को बचाना है। करना क्या अपने आप को, कि निफाक से बचने की दुआ करें, अपना मुहासबा करना है, तो खलुस नीयत चेक करें, फिर मेहनत की आदत डालें। आप देखिए कि आप इस इल्म के रास्ते में अगर एक नुक्ता भी डाल रहे हैं ना, अल्लाह उसको भी कल आपके नामे अमाल में तोलेगा। यहाँ बैठने में अगर आपकी कमर को एक थोड़ी सी तकलीफ भी आती है ना, एक एक करवट का बदला कल मिलेगा। अल्लाह ताला इंसान की मेहनत को रायगा नहीं करता। नियत करें कि अल्लाह हमारी मुनाफ़त को ख़त्म कर दे, और कभी दूसरों को अपनी मुश्किलात ना बताएं। बाज़ दफ़ा हम कुरान पढ़ने लगते हैं ना, फिर शोर के हम चाहते हैं, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल, हर वक्त ये रोज़ सबक याद करना। रो आपको लोग कुछ पूछेंगे आजकल, अगर कोई आपका हाल पूछे ना, तो आपको कैसा बताना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कहना अल्लाह का शुक्र है, फंस गए हैं, अब क्या करें। यकीन करें, आपके रवैये दूसरों को भी इस तरफ लाएंगे, और आपकी कमज़ोरी दूसरों को आप पर रहम खाने की दावत देगी। कभी किसी के सामने नेगेटिव ना हो, कभी कोई मुश्किल भी आए, तो अल्लाह को कह, अल्लाह ताला आपके रास्ते की मिसाल है। आप देखिए कि कोई आपको तकलीफ दे तो आप सब कुछ कहते लगाते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी शौहरों की कोई शिकायत हर एक को लगाते फिरें, कि मेरे शौहर ने मुझे ये कहा, मुझे डांटा, मुझे कहा। बुरा समझते हैं ना? कोई अपने माँ बाप की बुराई करते हैं सामने आके, तो क्या अल्लाह के रास्ते की मुश्किलात पेश करेंगे? कभी किसी ने स्कूल कॉलेज इसलिए नहीं छुड़वाया बच्चों को कि इसको बड़ा मुश्किल लगता है, हाय मेरा मासूम बच्चा, इसको मुश्किल लग रहा है, इसका स्कूल छुड़वा दो, हाय डॉक्टर बनने में तो 10 साल लगेंगे, इसको नहीं बनाते, मेरा तो फूलों जैसी मेरी बच्ची है, ये घर में ही रहे। दुनिया में देखें लोग क्या कुछ नहीं करते, और जब वो तो खुश नसीब लोग हैं जिनको अल्लाह के रास्ते में मुश्किल आए और उन्होंने हिदायत के सौदे किए हैं। इस वक्त आप हिदायत के सफर पे बैठे हुए हैं, और अल्लाह मुबारक करे और कामयाबियों वाला करे। आप देखिए कि जितना आप इस पे जमेंगे, उतना अल्लाह ताला आपको जमाएगा। ابھی تک یہاں منافقین کی علامتوں پہ بات ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلی آیتوں میں دو مثالیں ہیں جس سے اس کو ہم مزید سمجھ سکیں گے, تلاوت بھی سنیں گے, اور جن کی تفسیر ہو گئی ہے ان کو سنیں اور سوچیں کہ قرآن کو سن کے سمجھ کے تلاوت سننا اور بغیر سمجھے تلاوت سننا ہماری زندگی میں کیا اثر رکھتا ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.